हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। राधे श्याम ने अपने अतीत को याद करते हुए कहा, तुम्हारी माँ का नाम सुमित्रा था। मैं और सुमित्रा कॉलेज में साथ पढ़ते थे और मुझे उससे बहुत प्यार था। मैंने घर वालों के सामने हाथ जोड़कर उससे शादी की और शादी की रात मुझे पता चला कि वो पहले से प्रेग्नेंट थे। उसके पेट में तुम पल रहे थे और मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता कौन थे। उस दिन मेरे दिल के जितने टुकड़े हुए, आज तक मैं उन्हें समेट नहीं पाया। लेकिन मैंने सोचा था मैं तुम्हारी परवरिश अकेले करूंगा और अकेले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया वो मुझे धोखा दे सकता है, तो उसके अलावा मैं किसी और अनजान इंसान के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पापा पहले पुराने ख्यालों के नहीं थे, उन्हें भी अरेंज मैरिज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। लगता था जैसे इश्क, मोहब्बत, प्यार ही सब कुछ होता है, और इसी के चलते मैंने अपने खानदान में सबसे पहले लव मैरिज की थी। लेकिन उसका जो नतीजा रहा था, उसके बाद मैंने सोच लिया था, इस घर में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं किसी की लव मैरिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि बचपन में अक्सर हम जिससे प्यार करते हैं वही हमें सबसे बड़ा धोखा देता है और हमारी नासमझी का फायदा उठाता है। बस इसलिए मैंने तुम्हें शुरू से कहा था, कॉलेज जाना है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए, किसी से प्यार करने के लिए नहीं। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम कभी भी किसी भी लड़के के कॉन्टैक्ट में रहो। हाँ, आजकल के लोग इसे बच्चों के पैरों में बेड़ियां डालना कहते हैं, और कहीं न कहीं मैं तुम लोगों का गुनहगार भी हूँ। लेकिन फिर भी मुझे एक संतुष्टि थी कि ये सब पाबंदियाँ तुम्हें मेरी निगरानी में प्रोटेक्टेड रखती हैं। अनाही सुन होकर राधे श्याम की बातें सुन रही थी। उसके दिल में बार बार बस एक ही नाम गूंज रहा था, और वो था सुमित्रा। अगर उसकी माँ होती तो उसका पिता कौन था? और अगर अब वो इस दुनिया में नहीं है तो कौन बताएगा उसे कि आखिर उसका वजूद क्या है, वो किसकी बेटी है? घबराहट से सूखे अपने होठों पर जबान फेरते हुए अनाही ने कहा, बाबा एक बार बोल दीजिए, ये सब मजाक है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं माँ की बेटी हूँ, आप ये सब, मैं ये नहीं सुन सकती। उसकी इन टूटी फूटी लाइनों को सुनकर राधे श्याम ने उसका सर अपने कंधे पर रख लिया और आहिस्ता से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सारा सच बता देना चाहता हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद कम से कम मेरी आत्मा में शांति रहेगी कि मैंने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया था। अनाही ने रोते हुए कहा, आप ये कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं चाहती आपको कभी भी कुछ भी हो, और आप ही मेरे पापा रहेंगे चाहे आप हजार बार मना करें। उसे सुनकर रोते हुए भी राधे श्याम के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने आगे कहा, जब सुमित्रा का सच परिवार वालों के सामने आया तो सबने मिलकर मेरा और सुमित्रा का डाइवोर्स करवाना चाहा। उस वक्त मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही अड़ गया था कि मुझे अपनी जिंदगी में सुमित्रा चाहिए। अगर वो किसी और का बच्चा अपने साथ रखना चाहती है तो मैं उसे जरूर अपना नाम दूंगा, और मैं सबके खिलाफ जाकर उस डाइवोर्स को रोक लिया। उस वक्त मुझे वो बस एक गलती लग रही थी, एक छोटी सी भूल, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद मेरी जिंदगी नॉर्मल चलने लगी और फिर तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, मेरी बेटी। राधे श्याम की आवाज में अचानक ही दर्द की जगह एक्साइटमेंट आ गया था। वो खुश हो गया था उस पल को याद करके जब उसने अनाही को अपनी गोद में उठाया था और उसकी छोटी छोटी उंगलियों को पकड़कर उसके हाथ को जो चूमा। याद करके आज भी राधे श्याम का दिल बहुत खुश हो जाता है। अनाही ने धीरे से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, पापा अगर मैं आपकी सबसे बड़ी खुशी हूँ तो फिर आप इस वक्त क्यों दुखी हैं? भूल जाइए सब कुछ, और अगर अभी भी कुछ ऐसा है जो मेरे सुनने लायक नहीं है तो मुझे मत सुनाइए, मैं ये बर्दाश्त कर लूँ वही बहुत है। ऐसा नहीं था कि अनाही को सब कुछ जानना नहीं था, लेकिन राधे श्याम के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे ये सब बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। वो खुद को बहुत फोर्स कर रहा है अनाही को सच बताने के लिए, और जब हम किसी अतीत की बात को याद करते हैं तो जैसे इस पल में वापस चले जाते हैं, और फिलहाल अनाही ये नहीं चाहती थी। राधे श्याम ने धीरे से उसके बालों को चूमते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। तुम नहीं चाहती कि मैं अपने बुरे पलों को याद करके दुखी हो जाऊं, लेकिन सच को कोई नहीं बदल सकता है। तुम्हारे होने के 3-4 महीने बाद ही मुझे पता चला कि सुमित्रा का अफेयर अभी भी बंद नहीं हुआ है। उसे वो इंसान मुझसे ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे थे, और मैं कहाँ किसी गरीब किसान की फैमिली से बिलोंग करने वाला एक सिंपल सा लड़का। उसके बाद उसने खुद डाइवोर्स प्लान किया उस वक्त मुझ पर जो बीती थी वो कोई नहीं समझ सकता है। मैंने उस इंसान के लिए अपने परिवार के खिलाफ जाकर डाइवोर्स लेने से मना किया था और कुछ महीनों बाद वो खुद सामने से मेरे मुंह पर डाइवोर्स पेपर मार कर गई थी कि उसे मेरे साथ नहीं रहना है। वो तंग आ गई थी मिडिल क्लास फैमिली में रहकर। उसके बाद न मैं अपने घर वालों का रहा और न ही अपनी प्रेमिका का, और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। अभी भी तुम बिल्कुल मेरे जैसे बिहेव कर रही हो, जैसे दामाद जी बिल्कुल सही हैं, और तुम चाहकर भी उनका साथ नहीं छोड़ोगी। लेकिन मुझे डर है, अगर सामने से वे डाइवोर्स के लिए बोल देंगे तब तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। मैंने तो जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, तुम कैसे खुद को संभाल पाओगी। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी उस तकलीफ से गुजरे जिससे कभी मैं गुजरा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं। अनाही ने अपना चेहरा उसके कंधे से हटाया और फिर उसके गालों पर आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी पापा, मैंने रात को आपको बहुत हर्ट कर दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। और रही बात रोहान जी की, तो ऐसा नहीं है, वे मुझसे डाइवोर्स नहीं चाहते हैं। मैं नहीं चाहती किसी और की गलती की सज़ा मेरे पति को मिले और मैं उनसे दूर हो जाऊँ। राधे श्याम को कहीं ना कहीं पता था अनाही का यही जवाब होने वाला है। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, उसके बाद सुमित्रा तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आई। बहुत ही बेशर्म औरत थी, उसे एक बार भी दया नहीं आई कि एक 3-4 महीने की बच्ची कैसे अनाथ आश्रम में रह सकती है, कैसे वो एक माँ के दूध के बिना रह सकती है। उस वक्त मुझे समझ आया कि मैं कितनी बेरहम औरत से प्यार करता था। ये सुनकर अनाही एक बार फिर शांत हो गई। उसे तो लग रहा था उसके पापा का अतीत बस इतना ही है, लेकिन अपने बारे में ये सुनकर तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। राधे श्याम ने उसके सफ़ेद पड़ चुके चेहरे को देखा और फिर प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं तुम्हें वापस ले आया अपने पास, हमेशा हमेशा के लिए। और उसके बाद राधे श्याम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, और मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो, और मैं अपने उस फैसले पर कभी अफसोस नहीं करूंगा।
अनाही के गले में तेज दर्द हो रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि वो चिल्ला कर रोए। ऐसा उसके साथ क्यों हुआ था? शायद अब उसे समझ आ रहा था कि एक हंसते खेलते फैमिली होने के बाद भी वो खुद को इतना ज्यादा इनसिक्योर क्यों महसूस करती है। उसकी इनसिक्योरिटी का उदाहरण खुद रोहान भी था, जिससे उसने एग्रीमेंट पर साइन करवाए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए रोहान उसे छोड़ नहीं सकता है। शायद उसके पैदा होने से लेकर अब तक उसके साथ वो इनसिक्योरिटी चल रही थी कि उसे हर वो इंसान छोड़ देगा जो उसके करीब है। राधे श्याम ने आंखें उठाकर अनाही के सफ़ेद चेहरे को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगाते हुए बोले, लेकिन जिस तरीके से दामाद जी रात को तुम्हें लेने आए थे, अब मुझे लग रहा है शायद मुझे अपना फ़ैसला बदल लेना चाहिए और तुम्हें उनसे दूर नहीं करना चाहिए। अनाही बहुत कुछ बोलना चाहती थी। उसके गले में तेज़ दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो चिल्लाकर रोना चाहती थी लेकिन रो नहीं पा रही थी। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। आज उसे अपने वजूद को लेकर बुरा लग रहा था। अगर किसी को इस दुनिया में नहीं चाहिए था तो उसे पैदा ही क्यों किया था, और उसकी माँ ने उसे अनाथ आश्रम छोड़ने के बजाय जान से क्यों ना मार दिया। अगर वो ऐसा करती तो शायद ज्यादा अच्छा होता।